ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, वह रूप जो तरंगों के माध्यम से चलकर हम तक पहुंचती है और हमारे श्रवण इंद्रिय के कर्णपटल को दीपित करके हमें श्रवण का बोध कराती है। ध्वनि से सभी परिचित हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये उसी ऊर्जा के माध्यम से पहुंच रही है। नित्य जीवन में आप तरह तरह की ध्वनियाँ सुनते रहते हैं, चिड़ियों की चहचहाट, झरनों के गिरने की आवाज़, पत्तियों की फड़फड़ाहट या इसी तरह की और ध्वनियाँ, और आपके मन में ये जानने की जिज्ञासा रहती होगी कि ये ध्वनि क्या चीज़ है और इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। ध्वनि के माध्यम से हम बहुत सारे अपने जीवन में ज्ञान का प्रसार करते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, और इसी तरह से हम देखें तो ध्वनि का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ध्वनि संचार का माध्यम है, यानी वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें दो ज्ञानेंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग 90% ज्ञान उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम तक पहुंचता है, ये हैं नेत्र और कान। तो हमारी श्रवण इंद्रिय और उसको उद्दीपित करने वाली ऊर्जा ध्वनि, ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। जैसा अभी मैंने जिक्र किया, संचार एक विध हो सकता है जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति इसको सुनता है। जैसे क्लास में अगर अध्यापक लेक्चर देता है तो वो एक विध संचार है। जैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये एक विध संचार है, लेकिन जब आप वार्तालाप करते हैं तो ये द्विविध संचार है। संचार के माध्यम से हमारे जीवन का लगभग आधा व्यापार चलता है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करें, विचारों का आदान प्रदान नहीं करें, तो हमारा कोई भी कार्यकलाप आगे नहीं बढ़ सकता। बिना इस प्रक्रम के आदमी के जीवन में और जानवर के जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। अब ये बहुत सारे संचार के माध्यम हैं जिनके द्वारा हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं, आपस में बैठ करके वार्तालाप करने का माध्यम है, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अलावा प्रिंट माध्यम है जिसमें अखबार या पुस्तकें इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, ये सब संचार के माध्यम हैं। और एक तरह से संचार सभ्यता के विकास की कहानी है। हम अगर आज उन्नति कर रहे हैं तो उसकी एक वजह यह है कि हमने एक भाषा विकसित कर ली है जिसके माध्यम से हम प्रभावी रूप से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा, ध्वनि संचार प्रक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ध्वनि के माध्यम से हमारे ज्ञान का आधा कार्य जो है वो संचारित होता है। ध्वनि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, वो चाहे सम्मुख वार्ता के द्वारा हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा हो, तो बहुत सारा ज्ञान हम तक पहुंचता है। ध्वनि ये एक जटिल माध्यम है, जटिल प्रक्रम है, जिसमें एक स्थान पर ध्वनि उत्पन्न होती है और फिर वह किसी माध्यम के द्वारा चलकर एक ग्राही तक पहुंचती है। इस प्रक्रम में बहुत सारे अन्य प्रक्रम को शामिल हैं। जैसे जब हम ध्वनि के उत्पन्न होने की बात करते हैं, इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। बंद कमरे में कैंडल जलाइए और ये देखिए कि उस कैंडल की उसकी लो वो फ्लिकर ना करे, वो इधर उधर नहीं होती, स्टेबल हो। तो उसके लिए अगर कमरे में कहीं कोई पंखा वगैरह चल रहा है या कुछ है तो उसको बंद कर दीजिए, और फिर उसके सामने आप बोलिए तो देखिए कि क्या उसकी लो वो इधर उधर होती है, उसमें फ्लिकरिंग होती है। अब अगर उसमें फ्लिकरिंग होती है तो ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि उस लॉ को, लॉ के ऊपर कोई बल लग रहा है, बार बार लगता है, हटता है, लगता है, हटता है। अब अगर मान लिया उसके ऊपर बल लग रहा है और वो उसमें गति हो रही है, वो चलती है, इधर उधर होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो लॉ काम कर रही है। वर्क या काम, इसकी परिभाषा ये है कि वो उसके ऊपर कोई बल लगे और उसमें कोई विचलन हो, डिस्प्लेसमेंट हो। तो इसमें विचलन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ध्वनि के कारण काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। अगर ध्वनि के कारण वर्क हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ध्वनि ऊर्जा है, क्योंकि ध्वनि या ऊर्जा वो वस्तु है जो हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। कि ध्वनि ऊर्जा है क्योंकि ध्वनि या ऊर्जा वो वस्तु है जो हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। जो सबसे साधारण संचार है, जिसमें मान लिया जाए कि एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, तो इस प्रक्रम में तीन एलिमेंट शामिल हैं, कम से कम तीन अंग हैं उसके। एक बोलने वाला जो ध्वनि का स्रोत है, एक माध्यम जिससे होकर के ध्वनि व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, और तीसरा वह व्यक्ति स्वयं जो उस ध्वनि को ग्रहण कर रहा है। तो इस तरह हम देखें तो संचार प्रक्रम के या संचार व्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण अवयव हैं जिनके बिना काम नहीं चलेगा। इनमें से एक को भी हटा देंगे तो परेशानी हो सकती है। स्रोत, माध्यम और ग्राही। ये ग्राही व्यक्ति भी हो सकता है या कोई यंत्र भी हो सकता है। स्रोत भी उसी तरह से व्यक्ति भी हो सकता है और मशीन भी हो सकती है। जैसे अगर आप माइक में बोलते हैं तो लाउड स्पीकर के थ्रू ध्वनि निकल रही है, तो ये उस तरह की भी चीज़ हो सकती है। माइक में बोल रहे हैं तो माइक के थ्रू भी वो ध्वनि के जो दोलन हैं, कंपन हैं, वो माध्यम में संप्रेषित किए जा सकते। मोबाइल की कार्यविधि भी उसी तरह से संचार प्रक्रम है। तो चाहे वो दूसरे स्थान से आने वाली मशीन की आवाज़ हो, व्यक्ति की आवाज़ हो, कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें वही तीन अवयव शामिल हैं। कहीं कोई बोल रहा है, किसी माध्यम से चल करके वो आवाज़ उस मोबाइल तक पहुंच रही है, वो मोबाइल उसको ग्रहण करके फिर उसको लाउड स्पीकर के थ्रू ध्वनि में वापस बदल करके हमको, हम तक पहुंचा रहा है। तो मोबाइल भी एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसा मैंने कहा कि संचार के लिए या तो हम ध्वनि स्रोत का उपयोग करेंगे, ध्वनि के माध्यम से संचार करेंगे, प्रकाश के माध्यम से भी संचार होता है, जैसे प्रकाश के माध्यम से भी संचार होता है। और इसको अगर और जनरलाइज कर लें, प्रकाश एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें गामा तरंगों से लेकर के रेडियो तरंगें तक शामिल हैं। ये सब तरंगें संचार के लिए उपयोग में लाती हैं। आपने देखा होगा अभी जो अनाउंस किया गया है, फ्रीक्वेंसी वगैरह बताई गई है, तो ये रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी है जो उसी तरह की वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जैसा प्रकाश होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से भी संचार होता है। तो जैसे रेडियो पर जो संचार हो रहा है, जो आप तक पहुंच रहा है, वो ध्वनि पहुंच रही है लेकिन वो रेडियो तरंगों के माध्यम से पहुंच रही है आप तक। तो संचार ध्वनि के माध्यम से होता है और प्रकाश के माध्यम से, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से भी होता है। इसमें जैसा मैंने पहले उल्लेख किया, ध्वनि का स्रोत एक कंपनकारी वस्तु है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे अगर मान लिया आप किसी ग्लास के ऊपर चम्मच टकराएं तो उसमें से आवाज़ आती है, और अगर आप उसको हाथ से छुएं तुरंत तो आप महसूस करेंगे कि वो वाइब्रेट कर रहा था। तो कोई ना कोई वस्तु वाइब्रेट करती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रकाश के केस में या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में ये आवेश है, बजाय कोई द्रव्यमान युक्त कण होने के स्थान पर ये कोई आवेश होता है। वो आवेश जब त्वरित होता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। अब ध्वनि और विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनमें बहुत सारे मौलिक भेद हैं। जैसे ध्वनि एक तरह की यांत्रिक तरंग है और इस यांत्रिक तरंग को चलने के लिए एक मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसका जिसमें इनर्शिया हो और द्रव्यमान हो, उसी के माध्यम से होकर के तरंगें आगे बढ़ती हैं। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब आवेश दोलित होता है या त्वरित होता है तो उसके कारण उसके वो ये एक तरह की विद्युत धारा है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस विद्युत धारा के लंबवत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और जो ऊर्जा का की दिशा है, गमन की दिशा, उस ऊर्जा गमन की दिशा के भी लंबवत, इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र होते हैं। और इन विद्युत क्षेत्रों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो ये बिना माध्यम के चलते हैं। दूसरा बड़ा अंतर ये है कि ध्वनि, इसका वेग बहुत कम है अपेक्षाकृत, करीब 350 मीटर पर सेकेंड और सो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, जबकि इसके तुलना में प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड और सो, और ये तुलनात्मक दृष्टि से इतना अधिक है कि कई बार ये लगता है कि ये अनंत है, ये कोई चीज़ जलाई और तुरंत प्रकाश हमारी आँख में पहुँच जाता। उसी वजह से ये लगता है कि जैसे बिजली कड़कती है आसमान में। अब होता यह है कि जब बिजली कड़कती है तो उसी समय जो है वो तड़ित झंझावात होता है, आवाज़ कड़क की आवाज़ भी जो है उसके साथ ही पैदा होती है, लेकिन जो है वो तड़ित का जो प्रकाश है वो हमको दिखाई दे जाता है और उसके काफ़ी समय बाद, मतलब जो है वो हो सकता है कि सेकंड्स में वो समय हो जाए, उसकी ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। तो दूसरा बड़ा अंतर ध्वनि और प्रकाश में ये है कि ध्वनि, इसकी गति कम है और इसकी अपेक्षा प्रकाश की गति बहुत ज़्यादा है। एक बात जो कम्युनिकेशन के सिलसिले में इनकी भूमिका को लेकर के समझनी चाहिए वो ये है कि दोनों हैं तरंगे, लेकिन दोनों अलग अलग तरह की तरंगे हैं। तरंगों में एक भेद ये होता है कि दोलन, जो भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है जिसकी वजह से वो तरंगे पैदा हो रही हैं माध्यम में या आकाश में, वो किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है और उसकी वजह से जो है ऊर्जा वो किस तरह से संचालित होती है। इसमें ध्यान देने की बात ये है कि जब हम कह रहे हैं कि ऊर्जा संचालित होती है माध्यम में से, ऊर्जा संचालित होती है, तो इसका अभिप्राय ये है कि माध्यम खुद नहीं चलता, उसमें से ऊर्जा ही चलती है, तरंग चलती है, डिस्टर्बेंस चलता है, विक्षोभ जगह जगह पर पैदा होते हैं, माध्यम के कण अपनी जगह पर दोलन करते रहते हैं, उन दोलनों का प्रभाव आगे बढ़ता है, ये तरंग है। और इस तरह से जो है वो एक दूसरी विधि भी ऊर्जा का के स्थानांतरण की है, जैसे वो विधि है कण के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण, जैसे हम जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो उसके साथ गतिज ऊर्जा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जाती है। उन दोनों में अंतर ये होता है कि जहाँ वो बुलेट है वहाँ उसकी ऊर्जा है, उसकी एनर्जी लोकलाइज्ड होती है, उसके साथ संबद्ध रहती है, लेकिन तरंग की ये ऊर्जा फैली रहती है, जिस भाग में से तरंग प्रसारित हो रही है उस पूरे भाग में वो ऊर्जा रहती है, डीलोकलाइज्ड है, वो स्थानिक नहीं है, कणों के साथ संबद्ध नहीं है, कण अपने आप जो हैं वो सिर्फ अपनी जगह पर कंपन कर रहे हैं, वो ऊर्जा को संचरित कर रहे हैं लेकिन खुद संचरित नहीं हो रहे हैं, खुद उनमें कोई गति नहीं है। ये इस गुण में ये है कि मतलब मूलभूत अंतर ये हुआ ध्वनि और इस अर्थ में कि ध्वनि के संचरण के मामले में कण हैं, माध्यम है इसलिए उसके कण हैं और वो गति करते हैं, तो ये दो तरह से गति कर सकते हैं, ये ऊर्जा संचरण की दिशा के लंबवत भी गति कर सकते हैं और ऊर्जा संचरण की दिशा में भी गति कर सकते हैं। लेकिन प्रकाश के लिए ये है कि क्योंकि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र हैं एक दूसरे के लंबवत और गति की दिशा के लंबवत भी, ये तरंगे किस तरह चल रही हैं, इसको हम दो अलग अलग नाम देते हैं। यदि विक्षोभ डिस्टर्बेंसेस ये ऊर्जा संचलन की दिशा के लंबवत हों तो उसको हम अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और अगर ये उसी दिशा में हो तो उसको अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो बेसिक अंतर इन दोनों में ये है कि ध्वनि ये जब गैसियस माध्यम में चलती है तो अनिवार्य रूप से, या लिक्विड्स में चलती है तब भी उसकी सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर तो जो है वो ट्रांसवर्स होती है, लेकिन अगर उसके अंदर चल रही है लिक्विड के अंदर भी तो ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल तरंग होती है, और प्रकाश ये ट्रांसवर्स वेव होती है। ये तरंगों के बीच का ये अंतर उनके कुछ एक्स्ट्रा गुण उनको देता है। जैसे ये है कि ट्रांसवर्स तरंगें जब किसी स्लिट या क्रिस्टल में से पास होती हैं तो उसके बाद उनके दोलन वो एक प्लेन में कन्फाइन हो सकते हैं, ये प्रक्रम ध्रुवण कहलाता है। और ये ध्रुवण का ये जो प्रक्रम है ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में ही हो सकता है, अनुप्रस्थ तरंगों में हो सकता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होता। इसलिए ध्वनि क्योंकि जो है वो अनुदैर्ध्य है इसलिए उसमें ध्रुवण नहीं होता, और प्रकाश ये अनुप्रस्थ तरंग है इसलिए उसमें ध्रुवण होता है। इसकी वजह से जो है वो जो संचार प्रक्रम हैं उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो जुड़ते हैं, लेकिन ये बाद की बात है। उसका अभी जिस लेवल पर हम संचार की बात कर रहे हैं उसके लिए आवश्यकता नहीं। तरंग एक डिस्टर्बेंस है जो माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और जैसा मैंने पहले उल्लेख किया इसमें माध्यम के कण सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, और उस कंपन के द्वारा अपनी ऊर्जा को पास के कणों को देते हैं, और इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचार होता है। इसमें कण सिर्फ अपने स्थान पर एक मीन पोजीशन के अबाउट, एक मध्य स्थिति के दोनों ओर ऑसिलेशन करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, स्वयं एक जगह से दूसरी जगह चल करके नहीं जाते। और अनुप्रस्थ तरंगों में कणों के ये कंपन ऊर्जा संचलन की दिशा के लंबवत होते हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगों में ये ऊर्जा संचलन की दिशा के अनुदिश होते हैं। तो तरंग एक तरह का डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल करके जाता है
जी।
और अनुप्रस्थ तरंग में ये कणों के एक हीप और एक तरह के गर्थ के रूप में दिखाई पड़ता है, एक शीर्ष और गर्थ
हाँ
के रूप में दिखाई पड़ता है, और एक शीर्ष और एक गर्थ मिलकर के ये एक तरंग बनाते हैं
जी।
जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में क्योंकि कंपन एक ही दिशा में ऊर्जा संचलन की दिशा में हो रहे हैं तो दाब परिवर्तन होता है, कहीं पर जो है कण पास पास आ जाते हैं, कहीं पर कण दूर दूर हो जाते हैं। तो जिस क्षेत्र में कण पास पास आते हैं उसको कंप्रेशन, और जिसमें वो दूर दूर जाते हैं उसको रेयरफैक्शन कहते हैं, और एक तरंग एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन से मिलकर के बनती है। तो इस तरह कणों के डिस्टर्बेंस से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में अगर हम कहें तो क्षेत्र के ऊपर नीचे होने से, कम ज़्यादा होने से, घटने बढ़ने से तरंगों का निर्माण होता है, और एक क्रैस्ट और एक ट्रफ यानी शीर्ष और गर्थ मिलकर के एक तरंग बनाते हैं। तरंगों के अभिलक्षणों की बात करें तो एक तरंग यानी एक शीर्ष और गर्थ मिलकर के उसकी जितनी लंबाई होती है वो एक तरंग की लंबाई कहलाती है, वो और उसको जो है टेक्निकली हम एक तरंग दैर्घ्य कहते हैं और लैम्डा से उसको डिनोट करते हैं, लैम्डा के द्वारा, एक ग्रीक लेटर है लैम्डा के द्वारा व्यक्त करते हैं उसको। दूसरा जो महत्वपूर्ण अभिलक्षण है तरंग का वो उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, जो ये बताता है कि एक सेकंड में किसी बिंदु से कितनी तरंगें गुजर जाती हैं। तो जितनी तरंगें गुजर जाती हैं एक सेकंड में, वो उसकी आवृत्ति होती है। और इसको हम प्रति सेकंड, और जिसको हेनरी हर्ट्ज के नाम पर हर्ट्ज नाम दिया गया है, इस मात्रक में नापते हैं। तो अगर मान लिया किसी बिंदु से होकर के एक सेकंड में 10 तरंगें गुजर जाती हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस तरंग की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। तीसरा जो अभिलक्षण है तरंग का वो टाइम पीरियड है, दोलन काल या आवर्त काल, जो ये बताता है कि एक तरंग को उस बिंदु किसी बिंदु से गुजरने में कितना समय लगता है। तो अगर एक तरंग 1/10 सेकंड में गुजरती है, यानी 10 तरंगें 1 सेकंड में गुजरती है, तो एक तरंग 1/10 सेकंड में गुजरती है, तो उसका दोलन काल या आवर्त काल 1/10 सेकंड, यानी 0.1 सेकंड है।
ओके।
इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि आवर्त काल और आवर्ति में व्युत्क्रम संबंध है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर हम आवर्त काल को टी से और आवृत्ति को एफ से प्रदर्शित करें तो टी बराबर 1/f होगा। चौथा महत्वपूर्ण जो अभिलक्षण है तरंग का वो आयाम है। आयाम में जैसा हमने कहा कि कण एक मीन पोजीशन के मध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करते हैं, तो वो मध्य स्थिति से अधिकतम कितनी दूरी तक जाता है ये उसका आयाम होता है। तो आयाम भी जो है एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। और पांचवा अभिलक्षण ये उसका वेग है। एक सेकंड में तरंग कितनी दूर जाती है, किसी भी स्थान से हम आरंभ करें, तरंग का क्रेस्ट देखें, मान लिया शीर्ष देखें, तो शीर्ष वहाँ से चल करके एक सेकंड में कितनी दूर चला जाएगा ये उसका वेग बताएगा। और ये हम देख सकते हैं कि वेग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में एक संबंध होता है, v = f λ, इससे हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। किसी विशेष माध्यम के लिए तरंग का वेग ये निश्चित होता है। तो ये तरंग वेग ये माध्यम का गुण है, ना तो ये स्रोत के ऊपर डिपेंड करता है ना ग्राही के ऊपर डिपेंड करता है, माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। तो ये पांच विशेष अभिलक्षण हैं और इनके द्वारा जो है वो हम तरंग के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभिलक्षण दोनों के हैं, हर तरंग के हैं। अंतर की बात मैंने पहले जैसे की, अंतर वो उनके वेग में है, अंतर उनकी प्रकृति में है, जैसे ध्वनि लॉन्गिट्यूडनल वेव है और प्रकाश ये ट्रांसवर्स वेव है। अंतर उनके उत्पन्न होने के प्रोसेस में है कि प्रकाश ये किसी आवेशित कण के दोलनों से उत्पन्न होता है या त्वरण से उत्पन्न होता है, और ध्वनि ये किसी मटेरियल मीडियम के कण के दोलन से उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग तरह की वेव्स हैं और संचार के लिए इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। प्रकाश के बहुत अधिक वेग की वजह से, प्रकाश के माध्यम से जो संचार होगा वो स्वाभाविक रूप से बहुत तेज होगा, और इसलिए ध्वनि के मामले में जो है ये देख सकते हैं हम कि जो है वो, क्योंकि उसके तरंग दैर्घ्य जो है वो काफ़ी कम होती, तरंग दैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा होती है ध्वनि की, तो इसलिए वो उसके साथ विवर्तन जैसे कुछ दोष भी जो है वो आते हैं, और इसलिए बहुत दूर तक ध्वनि के द्वारा संचार नहीं हो सकता। अगर दूर संचार करना है तो उसमें हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सहारा लेना पड़ता है। मोटे तौर पर हम ये कहें कि जिसको सुन करके हमें अच्छा लगे, आनंद आए, वो संगीत है, और जिसको सुन करके हमें अच्छा ना लगे, परेशानी हो दिमाग में, टेंशन हो, वो शोर है
जी।
जहाँ तक तरंग की प्रकृति के हिसाब से इसको सोचना है तो ये है कि म्यूजिक, संगीत एक संतत ध्वनि है जो एक निश्चित क्रम के बाद दोहराई जाती है, और शोर एक अब्रप्ट ध्वनि है, उसमें किसी क्रम में नहीं, वैसे ही जो है वो कोई मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनें जो हैं वो अलग अलग जो चलती रहे उनका जो है वो, उनसे जो आवाज़ें निकलती हैं उनसे मिक्स्ड जो आवाज़ बनती है वो शोर है एक तरह से। इसमें तरंग के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि जो अवांछित तरंगे हैं जो नहीं चाहिए हमें वो शोर है, और जो वांछित हैं जो हमें चाहिए
वो
हाँ उसको संगीत ना कहें तो वो शोर नहीं है, ये तो कह ही सकते हैं कम से कम वो हमको चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो है वो तरंगों की जब हम बात करें तो वो ध्वनि की ही तरंगे हों, अन्य तरंगे भी हो सकती हैं। और ये रव की तलाश, शोर, नॉइज़ जो है वो उसको फिल्टर करना ये प्रकाश के द्वारा जो संचार होता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शोर जो है वो अवांछित तरंगे हैं जिनको हमें हटाने की ज़रूरत होती है। जैसे तरंगों के कुछ विशेष गुण हैं जिनकी वजह से जो है हम ध्वनियों को पहचान सकते हैं, जैसे उनमें से एक है लाउडनेस, एक खास लाउडनेस की तक की आवाज़ जिसको हम ये समझ सकते हैं कि 65 ऑसिलेशंस पर सेकंड, हाँ 65 हर्ट्ज़ तक की आवाज़, वो हमारे कानों को ठीक लगती है, उसकी वजह से कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर 85 से ज़्यादा बढ़ जाए फ्रीक्वेंसी तो फिर वो हमको टेंस करने लगती है,
प्रॉब्लम
क्रिएट करती है, वो उसको हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। हाँ, तो उस नॉइज़ पोल्यूशन से जो है वो बचने की कोशिश करते हैं हम लोग। हाँ, यही ध्वनि प्रदूषण का अर्थ यही है कि आवृत्ति जो हमारे आसपास जो ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं उनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा नहीं, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो, आवृत्ति की बात नहीं है, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर उनकी तीव्रता, उनकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगी, जैसा हमने कहा ये तीव्रता की या लाउडनेस की जो का जो मात्रक है वो डेसिबल्स है, तो ये डेसिबल्स की बात की मैंने कि 85 डेसिबल से ज़्यादा है तो इट विल बी जारिंग टू आवर ईयर्स, तो हमारे कानों पर उसका क्षोभ करने वाला, टेंशन पैदा करने वाला, हाँ, और इसलिए उसको हम ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा आवृत्ति की, इससे ज़्यादा इंटेंसिटी की जो साउंड है वो नॉइज़ है।